मिलावला पुस्तक 11वी लेक्चर नंबर 3 ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम शुद्धात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं वेदगवेदगवेदगम् अवेदगं वेदगन्थसं सिद्धम् सिद्धं प्रणमीय शिरसा वोच्छं वेदगमाहियारमं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पौर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 16 पर आ गए। 16 अनुभाग उदीरणा की बात चली, अपनी मूल प्रकृति अनुभाग उदीरणा, उसमें अपना स्पर्शन की बात चल रही थी ना कल। हाँ, स्पर्शन की बात अपनी चल रही थी। हमने ओघ से देख लिया था और आदेश में हमने नारकियों में, तीर्यंचों में, मनुष्य त्रिक में देखा था, सब यानी हो ही गया था उत्कृष्ट संबंधी। अब जगण्य का प्रकरण हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 16 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ जगण्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनी के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि जघन्य यहाँ मूल प्रकृति में जघन्य कब कहना, तो शपक दसवें के अंत में, तो मनुष्य लोक में हो गए तो लोक के असंख्यातवे कैसे शपक चारित्रमो की क्षपणा। अजघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया आदेश से। अब हर एक गति आदि में बताएंगे। नारकियों में मोहनी के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, और अजघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। जो जघन्य नहीं है वो तो अजघन्य, वो तो मारणांतिक, मारणांतिक की अपेक्षा उपोपाद की अपेक्षा दोनों ही व्यतीत होगा। जब जघन्य कब होगा तो वहाँ के सर्व विशुद्धि जो है समय दृष्टि के, तब उसके जघन्य होगा। उपपाद में नहीं लेंगे, वहाँ अजघन्य की बात चले, अजघन्य की बात चले, उपपाद भी है, मारना भी है, दोनों ले सकते हैं। हाँ, देखो 6 भाग कैसे लेना, क्योंकि 7वीं पृथ्वी तक लेना, 7वीं पृथ्वी के नीचे कितने राजू नीचे हैं, 6 राजू नीचे, क्योंकि दूसरी पृथ्वी 1 राजू नीचे, तीसरी 2 राजू नीचे, चौथी 3 राजू नीचे। नहीं, सातवें नरक का नारकी जब मारणांतिक करता है, वो अभी सातवें नरक का नारकी है, मारणांतिक कहाँ करेगा, तीर्यंच में, तो पूरे कहीं ना कहीं से तो उसने तो एक राजू व्यापा है और हाइट उसकी 6 राजू हो गई, तो भूतकाल की अपेक्षा स्पर्शन जो है मारणांतिक में उसका 14 भाग में से 6 भाग सुना हो गया। अजघन्य की बात है, जघन्य के काल में उसका नहीं होगा, क्योंकि वो तो करण परिणाम में होगा उसका। यहाँ मोहिनी की बात चल रही है। अन्य प्रकृति में सोचना पड़ता है शुभ प्रकृति है कि अशुभ प्रकृति है। यहाँ तो आसान है कि मात्र मोहिनी की बात है तो यह अशुभ प्रकृति ही है, तो जहाँ विशुद्धि ज्यादा होगी तब अनुभाग वीणा वहाँ कम होगी। जघन्य उस गति के लिए जघन्य। नारकी के लिए जघन्य कब होगा? तो वहाँ तो सर्व विशुद्ध जीव लिया तो सम्यक दृष्टि, और तिर्यंच में पांचवें गुणस्थान वाला सर्व विशुद्ध लिया। अनंतानुबंधी की विषय योजना में होगा ना
नारकी में तो जघन्य।
हाँ, उपशम के काल में विसर्जना
नहीं, नारकी में तो जो सपना करके जो जीव आता है दर्शन मोहनी की पहले नरक की अपेक्षा हो जाएगा। जघन्य में जघन्य अनुभव,
मोहनी का जघन्य अनुभव।
हाँ, जो दर्शन मोहनी की सपना करके प्रकृति वेदक आ रहा है ना, उसको होगा ना।
वो तो उत्तर प्रकृति में लेंगे हम, सम्य प्रकृति में ले सकते हैं।
नहीं, मोहनीय के भी ऐसे हो सकता है ना कि जो अंतर्मुख वाली जो स्थिति लेके आया है समीप दर्शन की।
नारकी में इतना ही बताया था।
हाँ, हमने कल
सर्व विशुद्ध समीप दृष्टि इतना ही लिया था ना। अगर वहाँ लेंगे तो उसका अंतर नहीं घटित होना चाहिए।
हाँ,
जघन्य का अंतर होता है कि नहीं देख लेते हैं। 11 पृष्ठ पर वो अंतर की बात चल रही थी, वो उत्कृष्ट है। जघन्य का प्रकरण हम 12 पेज पर देखते हैं। तो वहां तो कहा तो उत्कृष्ट के समान भंग है। अब उत्कृष्ट में क्या लिखा था? उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का अंतरकाल कितना है? जघन्य अंतरकाल एक समय, उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 साल, दो बार हो सकता है। यानी जघन्य भी दो बार हो सकता है। ख्याल में आई ना बात? इससे हम घटित कर सकते हैं। यानी अगर वो हम कृतकृत्य वाला लेते तो उसका अंतर कैसे घटित होगा? ख्याल में आई ना बात? ये तो हम कोई ना अन्य अनुयोगों के द्वारा उसको घटित कर सकते हैं। हाँ, अभी मूल प्रकृति की बात चल रही है। अन्य वो सारी प्रकृतियां है ना वहां पर विद्यमान, तो हम उसको जघन्य नहीं कह सकेंगे। हाँ, नहीं लिया वो तो उत्तर प्रकृति में ले लेंगे। वो सम्यक प्रकृति की जब अलग से बात करेंगे तब उत्तर प्रकृति में घटित करेंगे। उनका भी नहीं कहा। अभी ऐसे जीवों के जो विसंजना वाले हैं उसको ले सकते हैं। नहीं, अभी तो अपना विषय क्या चल रहा है? स्पर्शन चल रहा है। स्पर्शन में तो क्या ले रहे हैं? जघन्य का स्पर्शन तो लोक का असंख्यात होगा नारकियों में, क्योंकि वे नारके अपने अपने नरक में हैं। परंतु अजघन्य का वे बाकी सभी नारकी अजघन्य ही है, तो उनमें मारणांतिक भी होगा उपपाद भी होगा। तो नीचे कहाँ तक? तो 14 भाग में से 6 भाग। अब यहाँ हम 16 पृष्ठ पर आते हैं। तो हमने देखा आदेश से हमने नारकियों में बात देखनी शुरू की थी। जघन्य के तो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण थे, और अजघन्य के लोक का असंख्यात भाग तो वर्तमान का, और स्पर्शन अतीत काल की अपेक्षा 14 राजू में से 6 राजू। इसी प्रकार दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में जानना चाहिए, क्योंकि पहली पृथ्वी में तो संख्यात योजन होते हैं। इतना विशेष है कि अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए। हर पृथ्वी कितना नीचे है तो 14 भागों में से कितने भाग लेना उसके। दूसरी पृथ्वी तो एक राजु, यानी 14 भाग में से एक भाग कहेंगे। तीसरी पृथ्वी के लिए दो भाग कहेंगे। इस तरह पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान भंग है, इसका अर्थ है वो लोक का असंख्यात भाग, क्योंकि पहली पृथ्वी तो संख्यात योजन नीचे है। तिर्यंचों में मोहनीय के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों में लोक के असंख्यात भाग, और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग। देखो, नारकी के लिए भी क्या कहा? वो अजघन्य के लिए कहा था, और यहाँ जघन्य के लिए कह रहे हैं। नारकियों में जघन्य तो अपने अपने क्षेत्र में घटित किया था, और तीर्यंचों के जघन्य के लिए 14 भागों में से 6 भाग कहा, ये कैसे होगा? बोलो मयंक भाई बोलो। तीर्यंचों के जघन्य के लिए स्पर्शन वर्तमान का क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग, क्योंकि संगी पंचीन यही करेंगे, पर स्पर्शन में 14 भागों में से 6 भाग लिया, वो कैसे होगा? हाँ स्पर्शन में हम मानना थी कहाँ तक? ये जघन्य जघन्य की बात कर रहे हैं, सोलवे तक लेना, छह राजू सोलवे तक लेना। जघन्य कब होगा? सर्व विशुद्ध काल में होगा, यानी वो तो पांचवी गुणस्थान वर्ती लेना, पांचवी गुणस्थान वाला मान लेते अनंत अनुबंधी की विसंजना वाला, जो कुछ है जो उसके सर्व विशुद्ध परिणाम है उस कारण है, उस अपेक्षा से 14 भागों में से 6 भाग प्रमाण, यानी वहाँ अजगण्य के लिए 6 भाग प्रमाण नारकी के लिए कहा था, और यहाँ तो जघन्य के लिए कह रहे हैं। अजगण्य अनुभाग के उदीरक जीवन ने सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, उसका क्षेत्र भी पूरा लोक है, तो स्पर्शन तो होगा ही, क्योंकि सभी तीर्यंच में तो सभी आ गए, केंद्रीय भी आ गए, तो उनका तो पूरा लोक होता है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। और जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग सर्वप्रथम वर्तमान का क्षेत्र बताया, और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का ये मारणांतिक की अपेक्षा, क्योंकि वो है भले पंचेंद्रिय परंतु एकेंद्रिय में भी करेंगे मारणांतिक, उस अपेक्षा विशेषार्थ। यहाँ अपने अपने स्वामित्व को देखते हुए सामान्य तीर्यंचों और पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में पंचेंद्रिय कुछ रह गया, न और द्र न रह गया पंचेंद्रिय में, द्री लगा है ना उसको न लगाना आधा, पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में। हाँ जैसे ऊपर लिखा है सेकंड लाइन में वैसे करना है, हिंदी में यूजुअली अभी पंचेंद्रिय के लिए उसका तो अनुनासिक लगाया, और अभी इसका द्री के लिए उसका भी अनुनासिक लगाना पड़ेगा, ऊपर सेकंड लाइन में कैसे लिखा है ना वैसे लिखना है, आधा न लगाना। तो सामान्य तीर्यंच और पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में मोहनीय के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों का स्पर्शन, लोक के असंख्यातवे भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण बन जाने से वहुक्त प्रमाण कहा है, शेष कथन सुगम है। यानी वहां क्यों है ऐसा नहीं कहा, तो सामान्य में वही उसका स्पर्शन है, इस तरह से कह दिया। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त और सब मनुष्यों में मुनि के जघन्य अनुभाग के उदीरकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्षेत्र के समान है यानी कहा लोक का संख्या द्वारा, और अजघन्य अनुभाग के उदीरकों ने लोक के असंख्यातवे भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त में जघन्य की बात हमने देखी थी, थोड़ा देख लेते फिर दोबारा, अंतर की अपेक्षा भी हमने देखा था, जघन्य में अंतर देखा था क्या उसका? उत्कृष्ट के समान ही बताया था, पंचेंद्रिय तीर्यंच अंतर्मुहूर्त वाला बताया था। एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त, वैसे जघन्य का भी एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त होगा स्पर्शन में, इसलिए मैं देख रही थी अंतर कि क्या वो मात्र शुरू में होता है कि नहीं होता है, यानी वो स्वयं भी जघन्य उस पर्याय में करेगा। हाँ, परंतु पंचेन्द्रियं च अपर्याप्तों का स्पर्शन जो है वर्तमान का लोक का संख्या का अभाव है, और फिर
मारणांतिक की अपेक्षा पूरा लोक हो
जाएगा, मारणांतिक में पूर्ण लोकों का, और जघन्य में भी लोक का संख्या का अभाव और पूरा लोक। क्षेत्र देख लो ना, क्षेत्र के समान जो बताया है तो क्षेत्र में भी ऐसा ही होगा। क्षेत्र में पूरा लोक कैसे होगा? क्षेत्र में उत्कृष्ट का लोक का संख्या का भाग था
कुछ दिया नहीं,
वैसे जघन्य का लोक का संख्या का भाग होगा और अजघन्य का पूरा लोक होगा। क्षेत्र तो वर्तमान की बात बताते ना केवल। देखो अभी हम
जघन्य तो कहाँ पे भी हो सकता है ना, पर एक बार आप
मारणांतिक के काल में भी हो सकता है
तो वो भी पूरा लोक ले सकते हैं।
हाँ, अजघन्य अनुभाग के उदीरकों ने लोक के असंख्या पे भाग, परंतु जब जघन्य कह रहे हैं तो एक केंद्रीय में जाने वाले का जघन्य होगा क्या? क्षेत्र के समान क्यों कह दिया उन्होंने? क्षेत्र में उत्कृष्ट का क्षेत्र तो उन्होंने लोक का संख्या तो भाग था, अजगर ने तो पूरा लोक लिया। देवों में मुनि के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। हाँ, विहार की अपेक्षा अजगन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। जो अजगन्य में उत्कृष्ट तक सभी है वो अजगन्य कहलाएगा, इसलिए 9 भाग प्रमाण लिया। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्प में जानना चाहिए, क्योंकि सौधर्म ऐशान के भी एक इंद्रियों में समुद्रात कर मिथ्या दृष्टि भी। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में
सौधर्म और ईशान में बिहार की अपेक्षा 3.5 राज्य के 8 राज्य
ना सौधर्म वैमानिकों के लिए 3.5 नहीं होता, भवनवासी भवनत्री के लिए। सौधर्म तो सौधर्म ईशान वाले स्वयं गमन करके जाएंगे, नीचे 2 राज्य ऊपर 6 राज्य। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में मोहनि के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने, यहाँ जघन्य की बात चल रही है ओ, तो अजघन्य के लिए 9 भाग कहा था, हाँ जघन्य के लिए 8 ही कहा था। ये भवनत्रिक में मोहनि के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5 और कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। स्वयं गमन करे तो 3.5, अन्य देव ले जाए तो 8। अजघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग तथा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5, कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। अजघन्य में तो फिर मारणांतिक लेना 8वीं पृथ्वी में ईशत प्रागवार में। सनत कुमार कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में मोहनि के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। यह वो 9 भाग घटित नहीं होगा, क्योंकि एक इंद्रिय संबंधी प्रकृति कौन बांधते हैं, उनके बंधे ही नहीं ना, एक इंद्रिय प्रकृति का बंधे ही नहीं है। कौन से भवनत्रिक और सौधर्म ईशान वाले जा सकते हैं एक इंद्रिय में? एक इंद्रिय प्रकृति का बंध, एक इंद्रिय स्थावर आतप वहीं तक है, ऊपर के जीवों में नहीं है। ये सूक्ष्म अपर्याप्त वगैरह का बंध कौन से देव तक है? वो तो है ही नहीं
है। सात प्रकृति
वो है ही नहीं है, सात का नहीं है,
नहीं
कौन
है।
से सात का नहीं है बोलो?
सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुर्द्रिय।
एक इंद्रिय का तो अभी हमने देखा।
नहीं, इसमें तीन चार अलग पक्ष है।
सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त बताए।
हाँ, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्द्रिय का नहीं होगा।
दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्द्रिय,
एक कौन सी बात है?
देवों में कौन से, ये जो हम मिथ्यात्व के बंधे विच्छेद की देखी हमने, उसमें से देवों में कौन से नहीं होते वो गिना रहे हैं। आतप को ले लेना, क्योंकि एक इंद्रिय का बंध नहीं करते तो आतप का भी नहीं करते।
एक इंद्रिय का बंध तो होता है ना यार,
तो एक इंद्रिय स्थावर आतप तीनों को ले। अच्छा, आप नीचे की बात करें। हाँ, नीचे की बात करें तो मिथ्यात्व गुणस्थान की गिनाओ।
हाँ, मिथ्यात्व, कुंडक संस्था, नपुंसक वेश और असंप्राप्त उपाधि का स्थान है। ये दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्द्रिय।
हाँ, पहले नहीं लेना, कंटिन्यूअस ऐसे लेना कि जो इनका बंध होता है उसको रखना पहले। हाँ, तो एक इंद्रिय स्थावर आतप को रखना।
हाँ,
इन सात का बंध तो देवों के भी होगा, आगे वाला नहीं होगा। तो आगे क्या बच गया? सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्द्रिय, नरगति, नरगत्यानुकूरी और नरकायी, इनका बंध नहीं होगा। पहले सात का होगा, कहाँ तक होगा? तो एक इंद्रिय संबंधित तो सौधर्म ईशान तक होगा, ऊपर तो वो भी नहीं होगा। एक सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्द्रिय, नरगति, नरगत्यानुकूरी और नरकायी, न हो गए। और पहले सात तो बन सकते हैं। हाँ, सोलह की नहीं, उसमें से सात का होगा, नौ का नहीं होगा। ये बहुत दिन हुए बंद विस्तृति का भी हुए,
अभी आने वाली है ना।
ये सौधर्म ईशान देखा हमने, और जगने की बात सनत कुमार की बात पढ़ रहे थे नीचे से कुछ छठी सातवीं लाइन। सनत कुमार कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में मोहनीय के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग अर्थ रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। यानी यहाँ वो मारणांतिक 9 भाग प्रमाण वो नहीं होगा यहाँ पर, फिर भी इनका नीचे तक गमन है, परंतु आनंद से लेकर ऊपर अभी कहाँ तक? आरण, आनंद, प्राण, तारण, चार को अलग निकाला, उनका व्यवहार है मध्यलोक तक होगा, नीचे नरकों में नहीं होगा। तो 6 राजू उनके लिए। आनंद कल्प से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में मोहनीय के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये विहार की अपेक्षा मारणांतिक को, तो मारणांतिक की अपेक्षा दोनों उतने ही गति हो।
यहाँ पे तो जगदीय में भी मारणांतिक होगा ना, पर वो तो पूरा खाली मनुष्य लोक से आने वाला होगा ना जगदीय में, तो वो 6 राज्य
मारणांतिक में वो पूरा गति 6 राज्य गति
नहीं,
मारणांतिक में नहीं होगा, विहार में ही होगा। आगे क्षेत्र के समान भंगे आगे ने ग्रेवेक आदि में अपने अपने स्वर्गों का जो लोक का संख्या था होगा।
हमने यही से निकाला कि वो ग्रेवे वाले नीचे नहीं जाते हैं, इसी लाइन।
हाँ, वो नीचे नहीं जाते, वो इसी लाइन ने बहुत बार ये बात आई है। उनका क्षेत्र कितना है, बिहार का क्षेत्र कितना है? तो 6 राज्य है, यानी 14 भाग में से 6 भाग। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए। अब काल प्ररूपणा 18 पुष्प पर आना, मूल प्रकृति के अनुभाग उदीरणा का प्रकरण है, 20 नंबर का भी अनुयोग है। काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का कितना काल है, तो जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। एक जीव की अपेक्षा लक्ष्मी बहन हमने कितना देखा था, उत्कृष्ट का काल, उत्कृष्ट का, उत्कृष्ट का दो समय, एक समय तो जघन्य, दो समय उत्कृष्ट। यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा बात करें, ये तो कहेंगे हमने दो समय पढ़े थे, अभी यहाँ अवली का संख्या था बात
नाना जी,
यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद अन्य अन्य जीव करता रहे, अवली का संख्या था हमने देखा ना, एक समय के लिए अवली का, तो दो समय के लिए वही होगा ना, क्योंकि अवली का संख्या तो भाग के भी बहुत भेद होगी, या उसको डबल करो तो भी अवली का संख्या का भाग ही होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का काल सर्वदा है, उत्कृष्ट को छोड़ो बाकी सारे अनुत्कृष्ट ही है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है मनुष्य त्रिक में, मोनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का काल सर्वदा है, क्योंकि वो उत्कृष्ट करने वाले, उत्कृष्ट संकलेश वाले तो पर्याप्त जीव हो गए। इसी प्रकार सर्वार सिद्धि में जानना चाहिए, सर्वार सिद्धि के उनके योग्य जो कोई उत्कृष्ट होगा तो उसका भी एक के बाद एक, ये तो संख्या थी जीव होगी वहां पर, क्योंकि वहां जाने वाले तो मनुष्य में उसमें से आने वाले हैं। मनुष्य अपर्याप्तकों में मोनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग, क्योंकि वहां तो इतने असंख्यात जीव है, लगातार आएंगे तो इतने होगी उसमें उत्कृष्ट के लिए भी। और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है, वो मार्गणा का काल। उत्कृष्ट सहित उसमें कोई होगा एक के बाद एक करने वाला तो अवली का संख्या होगा। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, मनुष्यत्रिक और सर्वार सिद्धि के देव संख्यात हैं, इसलिए इनमें मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक नाना जीवों का उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है, क्योंकि अत्रुट्यत संतान की अपेक्षा, अत्रुट्यत ने बीच में टूटे बिना, आपने कंटिन्यूस अत्रुट्यत संतान की अपेक्षा इनमें नाना जीव यदि निरंतर उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करे तो उस काल का जोड़ संख्या समय ही होगा। ओघ से और आदेश से शेष गतियों में मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक नाना जीव असंख्यात से अधिक नहीं हो सकते, इसलिए इनमें उक्त न्याय के अनुसार उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक नाना जीवों का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा, यानी एट अ टाइम कभी भी आवली से असंख्यात विभाग से ज्यादा नहीं जीव होगी उसमें, तो उन्हीं को एक के बाद एक उत्पन्न कराया, उत्पन्न कराया ने उन्होंने उत्कृष्ट बनाया, ये वो जन्म की अपेक्षा वो बात नहीं है, उत्कृष्ट संकलेश करने की अपेक्षा। मनुष्य अपर्याप्त यह सांतर मार्गणा है, इसलिए इनमें इसमें मोहनी के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक नाना जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण बन जाने से उक्त काल प्रमाण कहा।
एक समय के लिए, अच्छा वो उत्कृष्ट हुआ और पीछे एक समय के लिए,
एक या अनेक जीव उसमें थे भले अंतर्मूर्त तक रहे उसके,
लास्ट समय में उत्कृष्ट करके,
हाँ, अनुत्कृष्ट हुआ, अंत में उत्कृष्ट करके अनुत्कृष्ट कर दिया, एक समय में फिर कोई नहीं रहा उस हाँ। पर्याय में। शेष कथन सुगम। अब जघन्य की बात करेंगे। जघन्य का नाना जीवन की अपेक्षा काल देखना है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मुनि के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, क्योंकि क्षपक दस्यु गुणस्थान के अंत में वो आवली प्लस एक समय है, तभी ये होगा। और जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों का काल सर्वदा है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक में जानना चाहिए शेष गतियों में उत्कृष्ट के समान भंग है, यानी उनका अपना अपना जघन्य कहना पड़ेगा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए। उत्कृष्ट के लिए हमने क्या देखा था, नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अवली का संख्या। जघन्य के बारे में ऐसा ही लेना। अन्य गतियों में विशेषार्थ, अधिक से अधिक संख्या जीव ही क्षपक श्रेणी में पाए जाते हैं, इसलिए नाना जीव यदि लगातार मोहनी के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करे तो उस काल का कुल योग संख्या समय ही होगा। इसलिए ओघ से मोहनी के जघन्य अनुभाग के उदीरकों का उत्कृष्ट काल संख्या समय कहा है। शेष कथन सुगम। अब अंतर अनुभव 21 नंबर का। नाना जीवन की अपेक्षा अंतर चलेगा। एक जीव की अपेक्षा हमने जान लिया था। अंतर दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोनि के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल कितना कहा,
असंख्यात
लोक प्रमा। इतने काल तक
कोई उत्कृष्ट
करेगा नहीं। वो तो अलग निकाला था हमने तो। हाँ, कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा काल है। असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति में भी हमने देखा था ना, इतनी स्थिति भी अधिक से अधिक नहीं बांधेगा तो। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, मनुष्य अपर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। उस मार्गना का ही अंतर बता दिया अनुत्कृष्ट। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, यहाँ जो मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरकों का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण बतलाया है, उसका इतना ही तात्पर्य है, यदि नाना जीव निरंतर उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा न करे तो उक्त काल तक नहीं करते। इतने काल के बाद एक या नाना जीव नियम से मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक हो जाते हैं। शेष कथन सुगम। ये उत्कृष्ट का अंतर देखा।
इसमें पंचमा रहेगा छठा रहेगा तो भी कोई उत्कृष्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो हमने
पंचम छठम से छोड़ दो, सातवें नरक के नार की है कि नहीं।
हाँ, वो भी नहीं करेंगे।
और उत्कृष्ट करने के लिए हमने देखा था चारों गतियों में हो सकता हाँ। है। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनी के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल छह महीना है। एक क्षपक श्रेणी का अंतर। अजघन्य अनुभाग के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, मनुष्य नियों में जघन्य अनुभाग के उदीरकों का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष तत्व प्रमाण है। मंजू ने ऐसा क्यों कहा? हाँ, मनुष्य ने स्त्री वेद सहित श्रेणी चढ़ने वालों का शपक श्रेणी चढ़ने में इतना वर्ष पुस्तक पर इतना अंतर पड़ता है। शेष गतियों में उत्कृष्ट के समान भंग है, इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ। शपक श्रेणी का उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना प्रमाण होने से यहाँ ओगसे तथा मनुष्य त्रिखने मोहनीय के जगन्य अनुभाग के उदीरक नाना जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना कहा। मात्र कोई भी मनुष्यनी जीव यदि शपक श्रेणी पर आरोहण न करे, श्रेणी करना श्रेणी हुआ है। तो अधिक से अधिक वर्ष पृथक्त्व काल तक नहीं करता, ऐसा नियम है। इसलिए इसमें मोहनीय के जगन्य अनुभाग के उदीरक नाना जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व प्रमाण कहा है, शेष कथन सुगम है। आगे 22 नंबर का भावानुगम की वो कुछ प्रिंट नहीं हुआ मेरे में। भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र उदयिक भाव है। अब अल्प बहुत्व देखेंगे। अल्प बहुत्वानुगम नंबर 23, इसमें 23 ही अनुयोग द्वार है मूल में। उत्तर प्रकृति में 24 हो गए, क्योंकि वहां सन्निकर्ष भी होता है ना, एक के साथ दूसरे की क्या पोजीशन है। अल्प बहुत्वानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव सबसे स्तोक है, उनसे अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव अनंत गुण है, ओग की अपेक्षा। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, तिर्यंचों में भी वो सबसे स्तोक और अनंत गुणी घटित होगा। आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव सबसे स्तोक है, और उनसे अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुण है, क्योंकि नारकियों की वहां असंख्यात संख्या है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचनीय तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। जो संख्यात जीव है उसको छोड़ा, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार सिद्धि तक, सर्वार सिद्धि के देवों में मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव उदरिक हुआ है। उदीरक जीव सबसे स्तोक है, उनसे अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार अनाहरक मार्गना तक जानना चाहिए, इसी प्रकार जगन्य का भी कथन करना चाहिए। हाँ क्या अभी भाग प्रतिच्छेद हरेक के अपने अपने अलग है, हरेक का उत्कृष्ट का भी हाँ यूनिट तो समान, उसका अपना अपना अभिभाग प्रतिच्छेद ही कहेंगे ना उसको।
नहीं वहाँ पे एक यूनिट की बात कर रहे हैं सभी में,
एक
यूनिट तो समान
की बात कर रही मैं अभी। उसका हर एक का कार्य अलग है, तो हम कैसे कहेंगे उसको, समझे ना। अभी हम शक्कर और मिर्ची दोनों की तुलना करें, शक्कर में खट्टास के अविभाग प्रतिच्छेद, मिठास के अविभाग प्रतिच्छेद शक्कर में, और मिर्ची में वो तिखास के अविभाग प्रतिच्छेद,
अलग अलग
अविभाग प्रतिच्छेद यानी अंश है वो, तो उसका यूनिट यानी वो अविभाग प्रतिच्छेद वो यूनिट बनाया है ना हमने, वो अपने शक्ति का अंश, स्मॉलेस्ट यूनिट। डिस्काउंट वो तो संख्या में होगा, परंतु यहाँ तो उसका हाँ जो कोई उसका अंश शक्ति जो है। अब यहाँ इसी में जो उत्कृष्ट जघन्य में उसमें हम भुजगार अल्पतर वगैरह देखेंगे, भुजगार उदीर्णा का प्रकरण है, उसमें ये 13 नियोग द्वार है। समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुत्व तक। समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार। अभी यहाँ भुजगार में पहला, ओघ निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से भुजगार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव है, बस इतना बता दिया। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, ये मनुष्यों में अवक्तव्य घटित होगा,
होगा बाकी नहीं।
आदेश से नारकियों में भुजगार अल्पतर और अवस्थित अनुभाग के उदीरक जीव है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। बस ये होते हैं, बस इतना ही बता दिया तो ये समुत्कीर्तना हो गई। अब स्वामित्व अनुगम यानी भुजगार का नंबर दो।
ये देवों में अवक्तव्य नहीं ले सकते ना?
देवों में कैसे होगा अवक्तव्य? देवों में रहते हुए अनुदीरक थे और फिर उदीरक हो गए तो कहेंगे
नहीं, द्वितीय अक्षम की अपेक्षा जो सभी।
तो कहीं कोई भी जीव देवों में उत्पन्न होता है तो जब देव में उत्पन्न हुआ तो ऑलरेडी वो उदीरक ही था, देव में रहते हुए अनुदीरक हुआ ही नहीं था।
उत्तर प्रकृति में
नहीं तो प्रत्येक गति में जाते ही उसको अवक्तव्य कहना पड़ेगा, फिर वहाँ उपशम श्रेणी की भी बात नहीं रहेगी। ये रूल लगाते हैं द्वयों में, तो सब गतियों में लगाओ।
नहीं नहीं, द्वितीय उपशम की अपेक्षा सभी प्रकृति में बात कर रहा था।
आप उत्तर प्रकृति में अभी मत घुसना, मूल प्रकृति को अभी था। अभी उत्तर आप आगे दौड़ते हैं बहुत। कौन सा अंग प्रश्न व्याख्या? प्रश्न ही प्रश्न। हम ऐसा करेंगे अभी, हाँ जी, आज ये प्रश्न पूछेंगे और कल इनका उत्तर आप ही देंगे।
स्टॉप। कल में
जब तक पहला आंसर नहीं आएगा। वही तो
आना ही नहीं। नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछना बंद कर लो।
हाँ तो कभी स्वामित्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है, ओघ और आदेश। ओघ से भुजगार अल्पतर और अवस्थित अनुभाग की उदीर्णा किसके होती है? अन्यतर सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के होती है। मूल प्रकृतियों की बात चल रही है यहाँ पर। अवक्तव्य उदीर्णा किसके होती है? अन्यतर गिरने वाले उपशामक के या उपशामक के मरने पर प्रथम समयवर्ती देव के होते, परंतु ये ओघ से हम
ओघ से नहीं होगा।
ये देव गति की अपेक्षा उसको अवक्तव्य नहीं कहेंगे। ओघ में वहाँ गति की अपेक्षा नहीं लगती है, तब हम कहेंगे वो वहाँ उसको अवक्तव्य हुआ। परंतु गति मार्गणा की अपेक्षा देव में अवक्तव्य होता है क्या?
नहीं,
तो नहीं।
हाँ।
इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें प्रथम समवर्ती हुआ समयवर्ती देव के होती है नहीं कहलाना चाहिए। जब मनुष्य त्रिक अगर हम अपेक्षा लगा लेते हैं तो मनुष्यों में रहते हुए मात्र वो उत्तम श्रेणी उतरने वाले की ही अपेक्षा लागू होगी, ये वाली बात वो आदेश से हो जाएगी, ओघ से नहीं रहेगी। आदेश से नारकियों में भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद का भंग ओघ के समान है, यानी किसी के भी होगी समय जिसकी मिथ्या दृष्टि। इसी प्रकार सब नारकी, तिर्यंच अतिरिक्त, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर नौ ग्रहवेग तक के देवों में जानना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त मनुष्य पर्याप्त तथा नौ अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सब पद किसके होते हैं? अन्यतर के होते हैं, क्योंकि तिर्यंच अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्त सारे ही मिथ्या दृष्टि है, इसलिए अन्यतर के होते हैं। और अनुदिश सर्वार्थ सिद्धि वगैरह जो है तो वहां तो कहेंगे समय दृष्टि है तो किसी के भी होगा ये सब। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए
कि समय दृष्टि में भी बुझागर हो सकता है,
होगा ना, मुनि है वहां पर तो उसके योग्य जो कोई उत्कृष्ट बंद होगा, समय दृष्टि को भी बंद होगा कि नहीं होगा, चौथा गुणस्थान वर्ती है तो उसके जो यथा योग्य बंद हो रहा है, तीन कषाय चौकड़ी बाकी है उसका बंध भी है वहां पर। अब कालानुगम, एक युग की अपेक्षा भुजगार का अल्पतर आदि का काल देखेंगे। तीन नंबर, कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से भुजगार और अल्पतर अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अवस्थित अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। देखो, हमने स्थिति में अल्पतर का लगातार समय दृष्टि रहो तो वो अल्पतर होता चला जाता, यहाँ अल्पतर का भी उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त बताया। और अवस्थित का संख्या समय ही एक मैक्सिमम बताया। ये मूल प्रकृतियों की बात से चल रही मोहिनी इंजन। अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। आदेश से नारकियों में भुजगार अल्प करो, उसको अल्य हुआ अल्पतर, और अवस्थित अनुभाग के उदीरक का भंग ओक के समान है। ओक के समान क्या कहा था? भुजगार और अल्पतर का एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त तक,
अवस्थित का संख्यात समय,
हाँ अवस्थित का
संख्यात समय,
एक समय से लेकर संख्यात समय तक। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवों में जानना चाहिए। मनुष्य त्रिक में ओक के समान भंग, ओक के समान इसलिए कहा कि अवक्तव्य उसमें होता है, इसलिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए। विशेषा, कोई एक जीव यदि मोहिनी के अनुभाग की भुजगार और अल्पतर उदीर्णा करता है तो परिणाम प्रत्ययवश कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल तक करता है। इसलिए इन पदों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है। मात्र अवस्थित उदीर्णा अधिक से अधिक संख्या समय तक की हो सकती है, इसलिए इस पद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या समय कहा है।
ये अनुपात में अल्पतर में एक समय, परिणाम प्रत्यय में क्या ले सकते हैं?
अनुभाग बंदर देवता स्थान जो है,
अच्छा वहाँ पे दे
उसने बढ़कर बांधा, हाँ। एक समय का उसका अल्पतर नष्ट हो गया,
और समान परिणाम से भी वेरिएशन हो सकता है। अल्पतर एक समय के लिए होगा क्योंकि वहाँ पे भी जो
यानी बंद उत्कृष्ट बंद के बाद तो नियम से अल्पतर होगा, हाँ। ही भी परिणाम के वश से भी उन्होंने परिणाम प्रत्यय वश, क्योंकि ये मोहिनी में तो परिणामों का वहाँ संबंध आता है, ये परिणाम क्यों लिखा, मोहिनी के बारे में लिखेंगे, अन्य कितने ही जो प्रकृतियां हैं अन्य कर्मों में कोई भव के कारण वगैरह ऐसे होती है, साता असाता है या अन्य जो कोई है तो उसमें वो भव का कारण होता है, इसमें परिणाम के कारण नहीं होता। जैसे आयु में जो कुछ होगी अनुभाग के अधिक या कम देना तो उसमें तो परिणाम का कोई संबंध नहीं है वहाँ पर। अभी हम जो परिणाम कहते हैं उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेदों का कम ज्यादा होना है वैसा लेके परिणाम, ऐसे हम बंद की स्थिति बंद की अपेक्षा तो अंतर्मूर्त से देते, वहां तो हमने अवस्थित वाला अंतर्मूर्त लिया था, पर अनुभाग की अपेक्षाएं संख्या समय ले रहे हैं, कोई डिफरेंस तो है ना डेफिनेटली। वहां लगातार अल्पतर हम जब तक समय दृष्टि है तो, या ग्रवेक आदि में तो अल्पतर देख रहे थे, यहाँ अंतर्मूर्त लिया है। अवक्तव्य हो गए ना, विशेषार्थ पड़े रहे। अवक्तव्य उदीर्णा उपशम श्रेणी से उतरते समय एक समय तक की होती है, या उपशम श्रेणी में मौन्य का अनुदीरक होकर मरकर देव होने पर प्रथम समय में एक समय तक होती है, इसलिए इसकी अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अवक्तव्य तो एक ही समय के लिए होंगे, दूसरे समय में तो जो कुछ चलेगा उसका अवस्थित होगा या बुझगार होगा अल्पतर जो यथा ये होगा, यह ओघ से काल का विचार है। इसी प्रकार यथा संभव गति मार्गणा के अवांतर भेदों में जान लेना चाहिए, यह अंतर्मूर्त वगैरह सब जगह घटित होगा। अंतरानुगम अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का, यह बुझगार का अंतर, इन्हें बुझगार नंबर चार होगा। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय के बुझगार और अल्पतर उदीरक का जघन्य अंतर काल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त में फिर वो बुझगार या अल्पतर वापस होगा। अवस्थित पद के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है, ओ और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। अवस्थित का क्या असंख्यात लोक प्रमाण है, वो किसी एक गति में रहने का थोड़ा ही बता रहे हैं।
प्रमाण काल तक तो ये होगा ही नहीं, अवस्थित
अवस्थित नहीं होगा किसी एक जीव को, अवस्थित अवस्थित का अंतर बताए, इतने काल तक उसको नहीं होगा ये बात बता रहे। हाँ अंतर नहीं 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 आप काल की सोच रहे इसीलिए प्रश्न था आपका। हाँ
यहाँ पे जब हम लोग अनुभाग उदीरणा की बात करते हैं तो एक निषेक में होगा और सभी निषेक में होगा, उदीरणा तो सभी होती है अनुभाग की, क्योंकि सेम निषेक में अनुभाग की उदीरणा होती रहती है, बढ़ती भी और कम भी होती जाती है। तो ऊपर के निषेक में अनुभाग ज्यादा है और वहाँ पे उदीरणा हुई, और नीचे के निषेक में अनुभाग कम है और वहाँ पे उदीरणा हुई, तो वहाँ पे हम ऊपर की उदीरणा लेंगे उत्कृष्ट वाली लेंगे कि जगन्य वाली लेंगे, क्योंकि अनुभाग में तो उदीरणा होती रहती है प्रत्येक निषेक में,
प्रत्येक निषेक में से होगी।
हाँ।
फिर भी जो मैक्सिमम होगी उसी को बताएंगे।
हाँ, तो वो वहाँ पे मैक्सिमम वाली लेंगे,
जो कोई है मैक्सिमम उसी का नाम लेंगे। अभी सत्ता की स्थिति कितनी बाकी है, अब क्या कहेंगे,
सत्तर बराबर जो भी मैक्सिमम वाली लेंगे।
जैसे हम जब सत्ता में कितनी अभी स्थिति कितनी बाकी है कहेंगे।
हाँ।
उसका अर्थ क्या है, जितनी निषेक है उसमें से उदीरणा हो रही है ना। अभी अनुभाग जहाँ कहीं भी हो अभी उसको निषेक की अपेक्षा मत सोचो, जितने मैक्सिमम अनुभाग है
उसमें से उदीरणा हो रही है।
हाँ, उसमें से उदीरणा हो रही है उसको लेना है। अच्छा, संख्या समय है, कोई जीव करेगा लगातार अवस्थित
तो संख्या
तो संख्यात समय, और नहीं करेगा
असंख्यात लोक
तो असंख्यात लोक, यानी वो लगातार भुजगार या अल्पतर ही करता रहेगा, यहाँ बताया ना अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में अंतर भी उसका अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में भुजगार तो करता रहेगा, अल्पतर भी करता रहेगा।
एक समय से अंतर्मूर्त बताया,
मिनिमम एक समय यहाँ लिखा, देखो ये तो सेकंड लाइन हमने पढ़ी 22 पेज पर, अवक्तव्य पद के उदीरक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरना उतरने वाला लेना, और उत्कृष्ट अंतरकाल उपाल पुद्गल परिवर्तन है, पहली बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है फिर वापस अंत में जाके फिर किया उसने, इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता इनमें अवक्तव्य पद नहीं है, यानी तिर्यंचों में असंख्यात लोग घटित होगा, ये आपने कहा था ना तिर्यंचों में घटित होगा, पहले तो ओग में तो सभी की अपेक्षा ली, अब तिर्यंचों में तो तिर्यंचों में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, यहाँ तो असंख्यात लोग ही लिया है, ये तो असंख्यात काल है। विशेषार्थ प्रत्येक जीव के मोनी की विजगार और अल्पतर उदीर्णा कम से कम एक समय के अंतर से और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त के अंतर से नियम से होती रहती है। नियम बताए है ना, इसलिए इन पदों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त प्रमाण कहा है, किंतु अवस्थित पद यदि न हो तो अधिक से अधिक असंख्यात लोक प्रमाण काल तक नहीं होता, इसलिए अवस्थित उदीर्णा का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। तथा एक जीव की अपेक्षा उत्तम श्रेणी के जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल को ध्यान में रखकर अवक्तव्य उदीर्णा का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्थ उद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। तिर्यंचों में उपशम श्रेणी का होना संभव नहीं, इसलिए इनमें अवक्तव्य उदीर्णा का निषेध किया है। आदेश से नारकियों में भुजगार और अल्पतर उदीर्णा का भंग ओग के समान है, इन्हें समय से लेकर अंतर्मूर्त, अवस्थित उदीर्णा का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर, नरक में रहते हुए की बात,
यहाँ पे भी कुछ कम किया,
हाँ, करेगा ना, एक बार भुजगार किया फिर वो ने अवस्थित के लिए बताया,
हाँ, कुछ कम किया तो वहाँ पे कुछ कम करने का कारण क्या है,
कारण इसलिए अवस्थित कब कहेंगे,
अच्छा कंपेरेटिव है,
एक समय के लिए कंपेयर करेंगे तो अवस्थित कहेंगे ना, इसलिए कुछ कम का। और उसमें भी कंडीशंस लगती होगी ना कुछ, इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में भुजगार और अल्पतर उदीर्णा का भंग ओग के समान है, वही अंतर्मूर्त मैक्सिमम, अवस्थित उदीर्णा का जघन्य अंतरकाल एक समय, उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति, यानी वो पृथक को कोटि वर्ष। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्तकों में भुजगार अल्पतर और अवस्थित उदीर्णा का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। भुजगार अल्पतर में तो होता ही, अवस्थित में भी उस पर्याय में रहने का काल मार्गणा का। मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तिर्यंच के समान भंग है, इतनी विशेषता है अवक्तव्य उदीर्णा का जघन्य काल जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त में दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा, और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, यानी पहले भव में उसने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरी थी, फिर मिथ्यात्व में चला गया और लगातार मनुष्यों में रहा। देवों में भुजगार और अल्पतर उदीर्णा का भंग ओग के समान है, यानी वही अंतर्मूर्त अधिक से अधिक, अवस्थित उदीर्णा का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर, देवों में भी हो। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, यहाँ सर्वत्र यथायोग्य अपनी अपनी काय स्थिति और भव स्थिति को जानकर, देवनारकी में भव स्थिति लेनी पड़ेगी और अन्यत्र काय स्थिति लेंगे, अवस्थित गिरणा का उत्कृष्ट अंतरकाल घटित कर लेना चाहिए। शेष कथन सुगम है। अब ये भुजगार का नंबर 5। नाना जीवन की अपेक्षा भंग विच्छय, भंग विच्छयानुगम उच्च बराबर करना। नाना जीवन की अपेक्षा भंग विषयानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद के उदीरक जीव नियम से है, जिसको हम कहेंगे ध्रुव भंग। कदाचित ये नाना जीव है और एक अवक्तव्य पद का उदीरक जीव है। भंग एक में ध्रुव भंग बता दिया, ये तीनों ही हमेशा हो गए, भुजगार अल्पतर और अवस्थित भी, क्योंकि अनंत जीवों को ले लिया ना यहाँ पर। फिर कहते हैं ये नाना जीव और एक अवक्तव्य वाला है। कदाचित ये नाना जीव है और नाना अवक्तव्य पद के उजी रखती है, या नाना में संख्यात लेंगे। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें अवक्तव्य पद के उदीरक जीव नहीं है। अवक्तव्य नहीं है तो बाकी सब हमेशा है, ये ध्रुव भंग ही होगा एक में उसमें। आदेश से नारकियों में भुजगार अल्पतर पद के उदीरक जीव नियम से है, कदाचित ये नाना जीव है और एक अवस्थित पद का उदीरक जीव है। जब नारकियों की बात कर रहे हैं तो अवस्थित को
ऑप्शनल
भुजा इसमें लेना, इसको क्या कहते हैं,
भजनीय।
अवस्थित पद का एक है, कदाचित ये नाना है यानी भुजगार अल्पतर वाले नाना है और नाना अवस्थित पद के उदीरक जीव है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच और सब देवों में जानना चाहिए। मनुष्य त्रिक में भुजगार अल्पतर पद के उदीरक जीव नियम से है, शेष पद भजनीय। शेष में किस किस को लेना है प्रेरणा बेन? अवस्थित अल्पतर को लिया उन्होंने भुजगार के साथ, अवस्थित और अवक्तव्य लेना, अन्यत्र हमने मात्र अवस्थित को लिया था। मनुष्य अपर्याप्त को में सब पद भजनीय, उनमें अवक्तव्य वाला होगा ही नहीं और बाकी जो तीन है तीनों भजनीय, क्योंकि वो सांतर मार्गणा इसी। हाँ, आठ होगी उसके। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।
ना,
उसमें क्या है,
भजनीय दो ही है ना,
कौन से है? तीनों भजन, अच्छा, तीनों भजनीय है।
मनुष्य अपर्याप्त की बात,
ये वो हम भजनीय और ध्रुव की अपेक्षा जो भंग लगाते हैं ना, उसकी अपेक्षा बात। अब भागा भागानुगम, ये भुज, हाँ, 6 नंबर का भुजगार का नंबर 6। भागा भागानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से भुजगार पद के उदीरक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? साधिक द्वितीय भाग प्रमाण है, यानी आधे से ज्यादा है। अल्पतर पद के उदीरक जीव कुछ कम द्वितीय भाग प्रमाण है। अवस्थित पद के उदीरक जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण है। हाँ, अवस्थित वाले जगार वाले जाना। अवक्तव्य पद के उदीरक जीव अनंत वे भाग प्रमाण है, वो तो उत्तम श्रेणी उतरने वाले। इसी प्रकार सब नारकी सब तिरियन च करना ज हुआ है, इसी प्रकार सब नारकी सब तिरियन च मनुष्य पर्याप्त सामान्य देव तथा भवनवासियों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जान लेना चाहिए। यानी कितने भाग प्रमाण है तो वो तो है ना, आधे से ज्यादा आधे से कम और असंख्यात के भाग प्रमाण। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थित पद के उदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण। मनुष्यों में भुजगार पद के उदीरक जीव साधिक द्वितीय भाग प्रमाण है, अल्पतर पद के उदीरक जीव कुछ कम द्वितीय भाग प्रमाण है, अवस्थित और अवक्तव्य पद के उदीरक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है असंख्यात वे भाग के स्थान में संख्यात्वा भाग कहना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब परिमाण अनुगम बताएंगे। ये नंबर 7 भुजगार का, भुजगार का नंबर 7 है नहीं? अभी तो हमने भागा भाग देखा, उसका एग्जैक्ट प्रमाण कितना है वो अभी देखेंगे। तो परिमाणानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद के उदीरक जीव कितने हैं? अनंत है। तीनों के हो?
अवस्थित वाले भी अनंत है।
हाँ, अवस्थित वाले भी अनंत। इसीलिए अन्यत्र तो वो उसको नहीं लिया अवस्थित पद को। अवस्थित में वो तीरियंचों में जहाँ करने वाले अनंत है उसकी अपेक्षा वहाँ लिया था। बाकी नारकी आदि में तो उसको भजनीय पद में डाला, ओग में तो उसको तीनों नियम से कहा था। अवक्तव्य पद के उदीरक जीव कितने हैं तो संख्या था। इसी प्रकार तीरियंचों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, विशेषता उस बराबर नहीं है, पो दिख रहा है। इनमें अवक्तव्य पद के उदीरक जीव नहीं है। आदेश से नारकियों में सब पदों के उदीरक जीव कितने हैं? असंख्यात। इसी प्रकार सब नारकी सब पंचमी तिरियंच मनुष्य पर्याप्त सामान्य देव और अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। यानी वहां वो असंख्यात संख्या घटित होती है। मनुष्यों में अवक्तव्य पद के उदीरक जीव कितने हैं तो संख्यात है। शेष पदों के उदीरक जीव कितने हैं? असंख्यात है। मनुष्य पर्याप्त मनुष्यनी और सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सब पदों के उदीरक जीव कितने हैं? तो कितने संख्यात है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब भुजगार में क्षेत्र बताएंगे, 8 नंबर। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद के उदीरक जीवों का कितना क्षेत्र है? तो अभी पहले हमने अनंत है संख्या देखी थी, अब कहेंगे सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र है। अवक्तव्य पद के उदीरक जीवों का लोक के असंख्यात से भाग प्रमाण क्षेत्र है। इसी प्रकार तिरियंचों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। शेष गतियों में सब पदों के उदीरक जीवों का कितना क्षेत्र है? लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।
ये देव में भी इसी लोक का संख्या बता दी।
भुजगार अल्पतर अवस्थित उनमें वो जो लोग का संख्या तो अभाग तो हर एक का होगा, पर्शन में हम देखे विहार वगैरह
नहीं, ये क्षेत्र में तो विहार की अपेक्षा
पर्शन में लगाएंगे,
क्षेत्र में भी हम लोग लेते हैं नहीं,
विहार और मारणांतिक हम पर्शन में लगाते, क्षेत्र में उनका अपना रहने का ठिकाना, स्पर्शन में देख लेते, देखो आगे ना अभी स्पर्शनानुगम की अपेक्षा भुजगार में नंबर 9 है, यह स्पर्शन 9 नंबर, स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से भुजगार अल्पतर और अवस्थित अनुभाग के उदीरकों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, सर्व लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, अवक्तव्य अनुभाग के उदीरकों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, ये मनुष्य में हो गया है ना अवक्तव्य। इसी प्रकार तिरंचों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता इनमें अवक्तव्य पदन नहीं है। अब आदेश से नारकियों में सब पदों के उदीरक जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यात विभाग वर्तमान का, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण मारणांतिक का क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान बंगल यानी कितना होगा, लोक का संख्या सब पंचेंद्रिय तिरंच और मनुष्य पर्याप्तकों में सब पदों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्या पे भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया, तिरंच और मनुष्य हाँ एक केंद्रीय में जाएंगे ना, मर कर मारना दिख अभी स्पर्शन चल रहा है, इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद के उज्ज्वल जीवों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। देवों में सब पदों के उज्जरकों ने लोक के असंख्यात भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। इसी पर हाँ, 8 जो है वो विहार की अपेक्षा और 9 जो है वो आठवीं पृथ्वी में मारणांतिक करने वाली की अपेक्षा। सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में सब पदों के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग रहने का ठिकाना, त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया, यहाँ भी मारना दिख गया
थे। तीन लाइन बातचीत थी ना, हाँ सौधर्मा ईशान कल्प के देवों में
एक
भवनवासी के अंतर और
भवनवासी रहेगा, इसी प्रकार सौधर्मा और ईशान कल्प के देवों में जानना चाहिए, बराबर ना वहाँ से पढ़ेंगे। भवनवासी अंतर और ज्योतिषी देवों में सब पदों के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग तथा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5 भाग, ये स्वयं विहार करे तो कुछ कम 8 भाग अन्य के साथ जाए तो, और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, मारणांतिक करेंगे एक इंजन में। सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में सब पदों के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। आनंद से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में सब पदों के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया, ये उनके विहार के ऊपर क्षेत्र के समान भंग है यानी वो ग्रेविक आदि ऊपर लोक का असंख्यात भाग होगा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गनाटक जानना चाहिए। विशेषा स्पर्शन विषयक स्पष्टीकरण सुगम है इसलिए अलग से खुलासा नहीं किया है। तात्पर्य कि जो जहाँ जो स्पर्शन है उसे ध्यान में रखकर स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए, जो जिस गति का जो स्पर्शन है जिस मार्गना का उसको वहाँ लेना चाहिए। अब भुजगार में 10 नंबर कालानुगम, कालानुगम अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से अवक्तव्य पद के उदीरकों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय, ये नाना जीवों की अपेक्षा बात कर लेते। एक जीव की अपेक्षा काल देख लिया था हमने, एक जीव की अपेक्षा एक समय से अंतर्मुहूर्त तक देखा था। पहले यहाँ अवक्तव्य पद की बात बताई, संख्यात समय। शेष पदों के उदीरकों का काल सर्वदा है, कोई ना कोई जीव वो सब कर रहे हैं क्योंकि अनंत जीव करते हमने देखा था। आदेश से नारकियों में भुजगार और अल्पतर पदों के उदीरक का काल सर्वदा है। अवस्थित पद के उदीरकों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्या भाग प्रमाण है। एक जीव की अपेक्षा संख्या समय देखे थे। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय तिर्यंश, देव और भवनवासियों से लेकर अपराजित विमान तक के देव में जानना चाहिए। तिर्यंशों में सब पदों के उदीरकों का काल सर्वदा है। मनुष्यों में नारकियों के समान भंग है, यानी क्या? नाना जीवों की अपेक्षा
अल्पतर वाला
भुजगार अल्पतर तो हमेशा रहेगा
खाली है।
और अवस्थित वाले के
एक समय से लेकर आवली के,
एक समय से लेकर आवली का संख्या का बात। परंतु अवक्तव्य के लिए जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल संख्या समय, एक के बाद एक कोई शपथ सदस्य में आएगा। तो इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियमित जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आवली के असंख्यातवे भाग के स्थान में संख्या समय कहना चाहिए। इसी प्रकार सर्वासिद्धि के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। मनुष्य पर्याप्तों में भुजगार अल्पतर पद के उदीरकों का जगने काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण, वो मार्गणा का काल। अवस्थित पद के उदीरकों का जगने काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। मनुष्य अपर्याप्तकों में जैसे अन्यत्र घटित किया था नारकी वगैरह में अवली का संख्या का भाव, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, यहाँ एक जीव की अपेक्षा काल और ओग तथा आदेश से अपने अपने परिमाण को जानकर, इन्हें प्रमाण को प्रमाण नाना जीवन की अपेक्षा काल का विचार कर लेना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होने से अलग से स्पष्टीकरण नहीं किया है। अब अंतरानुगम कितना नंबर
है?
11। ये भुजगार का 11 नंबर है। अंतरानुगम अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है। अवक्तव्य पद के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय, उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक है, ये हमने देखा था। उपसम श्रेणी की उसका उत्कृष्ट अंतर काल नहीं,
अंतर।
इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। आदेश से नारकियों में बुजगार और अल्पतर पद के उदीरकों का अंतर काल नहीं है, वो तो सर्वदा है। हमने देखा काल में तो हमने देखा था सर्वदा है, यहाँ नाना जी उनकी अपेक्षा बात चल रही। अवस्थित पद के उदीरकों का जघन्य अंतर काल एक समय है और उत्कृष्ट अंतर काल असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचमीय तिर्यंच और सब देवों में जानना चाहिए। मनुष्य त्रिक में नारकियों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद के उदीरकों का भंग ओघ के समान है। अवक्तव्य का अंतर कितना होगा?
मनुष्य की बात है ना?
हाँ,
एक समय से लेके
एक समय से लेके
नहीं, मनुष्य की स्थिति कम है
मनुष्य त्रिक में रहते हुए।
हाँ,
उसका अंतर कितना कहेंगे?
नहीं, वर्षों तक तो
एक जीव की अपेक्षा पूर्व कोटि पृथक तो कहेंगे और नाना जीवन की अपेक्षा वर्ष पृथक। मनुष्य पर्याप्तकों में अभी हमने देखा था ना, वर्ष पृथक में मनुष्य पर्याप्तकों में भुजगार और अल्पतर पद के उदीरकों का जघन्य अंतर काल एक समय है और उत्कृष्ट अंतर काल पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। मार्गणा का अंतर, अवस्थित पद के उदीरकों का जघन्य अंतर काल एक समय है और उत्कृष्ट अंतर काल असंख्यात लोक प्रमाण है, जो हमने ओघ में भी देखा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। भावानुगम नंबर 12, बुजगार 12। भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र उदयिक भाव और अल्पभूतवानुगम भुजगार का 13, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से अवक्तव्य पद के उदीरक जीव सबसे स्तोक है, उनसे अवस्थित पद के उदीरक जीव अनंत गुण है, क्योंकि अनंत जीव कर रहे हमने देखा था। उनसे अल्पतर पद के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं, ये भी अनंत है फिर भी उसमें भी असंख्यात गुना का डिफरेंस है। और उनसे भुजगार पद के उदीरक जीव विशेष अधिक है,
यानी
मैक्सिमम है भुजगार वाले। इसी प्रकार उसको उत्कृष्ट नहीं कहा, भुजगार का जितना है उससे बढ़कर। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य पर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर अपराजित सिंहमान तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। मनुष्यों में सबसे स्तोक अवक्तव्य पद के उदीरक जीव है, मनुष्यों में लगा रहे। उनसे अवस्थित पद के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं, या तो वो अपर्याप्तों को भी ले लिया। उनसे अल्पतर पद के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं और उनसे भुजगार पद के उदीरक जीव विशेष अधिक है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणे के स्थान में संख्यात गुणा करना चाहिए। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब ये भुजगार का अपना यहाँ प्रकरण समाप्त होता है। हाँ, कल से वो पदनिक्षेप ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सो वाणी मस्त। सदा देत हो। अश्विन
नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उच्चारम नमो लोहे सुब्ब श्रावणम नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उच्चारम नमो लोहे सुब्ब श्रावणम।